ஓம் சாந்தி. ஞான சரோவர் மே இஸ் ஹால் கே அந்தர் ஜப் பி யோக கர்னே கா அவசர் மில்தா ஹை தோ ஐசே லக்தா ஹை கி ஜைசே கோய் குஃபா கே அந்தர் பைட் கே தபஸ்யா கர் ரஹே ஐசா ஹோதா ஹை நா. अंडरग्राउंड गुफा है और इस गुफा में बैठ करके जैसे इस शरीर के अंदर आत्मा शरीर रूपी गुफा में बैठती है, ऐसे स्थान भी बाबा ने ऐसा आपको दिया है जहां पर कोई भी आवाज नहीं है, कोई हलचल नहीं है। हम लोग अधिक समय शांतिवन में रहते हैं तो वहां पर देखते हो आप कितना आवाज कितनी हलचल दिखाई देती है। कोई स्थान ऐसा नहीं लगता जहां ऐसी साइलेंस हो। अभी ट्रेनिंग सेंटर में एक दो हाल हैं जहां कभी कभी क्लासेज होती हैं तो ऐसे लगता है कि बहुत साइलेंस है, लेकिन अन्य स्थानों पर उठक बैठक बहुत होती है। तो यहाँ पर आप सभी को ये सौभाग्य मिलता है, विशेष सेवाधारी जब आते हैं तो शाम के समय का ये योग बहुत शक्तिशाली। अगर आधा घंटा भी कर लेते हैं तो ऐसे लगता है पूरे दिन की बैटरी चार्ज हो जाती है। आजकल अगर बहुत बैटरी यूज होती है तो आप देखो बहुत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। तो आप सभी अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए रोज नियम पूर्वक आधा घंटा भी शाम का योग, कई बार ये अमृत वेले से भी पावरफुल होता है। अमृत वेले में देखता हूँ कुछ समय योग अच्छा करते हैं, लेकिन अगर लक्ष्य को लेकर के नहीं बैठते, अगर कोई अच्छा मनन नहीं चलता, केवल शांत स्वरूप स्थिति में रहते हैं तो नींद का ऐसा प्रभाव होता है जो थोड़ा समय ठीक बैठते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन ये समय ऐसा है कि अगर कारोबार से निवृत्त होकर फ्रेश होकर तैयार होकर हम बैठते हैं तो जैसे फरिश्तों की दुनिया में सैर करते हैं। आधा घंटा भी ऐसे बैठ जाओ तपस्वी बन करके तो कितनी आत्माओं को शांति की शक्ति दूर दूर तक पहुंच जाएगी। वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं ना। जब हम अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होते हैं तो चारों ओर शांति के प्रकंपन फैलने लगते हैं। मनसा सेवा करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक स्थान पर अगर मन और बुद्धि को एकाग्र करके स्थिरता से बैठ जाओ तो शांति की शक्ति चारों तरफ फैलने लगती है, दूर दूर तक सकाश जाती है। एक दिन मैं पांडव भवन में शाम को योग कर रहा था, क्योंकि पांडव भवन में भी 6 बजे के बाद एकदम सन्नाटा हो जाता है, पार्टियां आना जाना बंद हो जाती है। तो एक दिन ऐसे ही मैं एक क्लास ले रहा था, बैठा था कुछ टीचर्स के साथ 6:30 के बाद, तो अचानक आवाज रुक गई, बोलना बंद हो गया, फुल क्लास वहां 25-30 लोग थे, सब सन्नाटा हो गया। मैं ये क्या हो गया पूछा उनने, ये क्या हो रहा है, बोलने का जी ही नहीं चाहता। जैसे बाबा कहता ना, जब कोई योगी तपस्वी आत्माएं शरीर छोड़ती हैं तो उनके वाइब्रेशन बहुत दूर दूर तक शांति के जाते हैं। तपस्वी आत्माएं तपस्या करती हैं उनके वाइब्रेशन दूर दूर तक जाते हैं। तो मैंने देखा कि जैसे कोई बहुत दूर दूर से सां सां आवाज ऐसे साइलेंस की शक्ति काम कर रही है। इतनी सब आत्मा योग कर रहे थे और हम थोड़े से लोग रूह ध्यान कर रहे थे, चुप हो गए, सब साइलेंस में चले गए। कुछ देर तक कोई नहीं बोला, एक भी नहीं बोला। ये क्या है? ये साइलेंस की शक्ति का प्रभाव है, चारों तरफ अपने आप फैलती है। तो बाबा भी हम बच्चों से चाहते हैं कि बच्चे ऐसे इस देहभान से डिटैच होने का अभ्यास करो, मन और बुद्धि को इतना अच्छा एकाग्र करने का अभ्यास करो जो सब हलचल समाप्त हो जाए। मैं जो हूं जैसा हूं अपने स्वरूप में स्थित होकर के बाबा जो है जैसा है उसको देखो और उसकी शक्तियों को लो। बाबा के साथ कनेक्ट होते ही वो शक्तियां आने लगेंगी। तो बहुत अच्छा गोल्डन चांस सेवाधारियों को विशेष मिल जाता है। भले कितनी भी सेवाएं हों, बीच बीच में ये अभ्यास चलता रहे और शाम के समय आधा घंटा बैठ के ऐसी तपस्या कर लो तो सारे दिन की थकान भी दूर हो जाएगी, बैटरी भी चार्ज हो जाएगी और आत्मा पुनः फिर से फ्रेश हो जाएगी। बाबा तो रोज अपने बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए कितने सारे होमवर्क देता है। मैं मुरलियों का जब अध्ययन करता हूँ कहता हूँ वाह कमाल है बाबा, आप हम बच्चों को कैसे कितना प्यार से पढ़ा रहे हो। संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए रिवाइज मुरलियां सुनो, वरदान सुनो, अव्यक्त मुरलियों को रिवाइज करो, कितना सारा खजाना रोज मिलता है, संपन्न कर देता है। ऐसे अगर मुरली को ध्यान से चिंतन में ले आओ, सुनते रहो, मनन करो, कई बार हम सुनते हैं तो ऊपर से निकल जाती है, ध्यान नहीं जाता। लेकिन अगर दोबारा उसको हम पढ़ते हैं या ध्यान से सुनते हैं तो ऐसे लगता है बाबा ने ये भी कितनी अच्छी बात बताई, ये भी कितनी अच्छी बात बताई, कितने खजाने मिलते हैं की मुरली में। तो आज बाबा ने कौन सा विशेष संकल्प हम बच्चों को पुरुषार्थ के लिए दिया, किसको याद है? कोई को याद नहीं। मुरली तो सबने सुनी होगी ना, टीचर बनो। टीचर बनने की प्रेरणा दी, मन मना भव का मंत्र सबको देते रहो, बाप समान टीचर बनो, गुरु नहीं। लेकिन आज बाबा ने वरदान के अंदर एक बड़ा अच्छा शब्द यूज किया। वर्तमान समय की आवश्यकता स्नेह की शक्ति है, स्नेह दो। आज एकाग्रता की बात नहीं थी, कल थी। आज बाबा ने कहा कि संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान स्नेह है, और आप बच्चों के पास स्नेह की शक्ति है, मास्टर स्नेह के सागर हो। बाबा ने आपको निस्वार्थ स्नेह दिया है, रूहानी स्नेह दिया है, आप सबको देते चलो। कोई कुछ भी दे आपको, आप रिटर्न में उसको स्नेह दो। हो सकता है सर आपको कोई ऐसे उल्टा सीधा बोले, अपमानित कर दे, डिसरिगार्ड हो जाए, तो आप उसको स्नेह देंगे या कहेंगे कैसा बेकार, कैसे छोड़ दो, किनारा कर लो इसे। लेकिन बाबा हम बच्चों को एकदम मास्टर रहम दिल स्नेह का सागर बनाना चाहता है अपने समान। बाबा ऐसा ही है ना, बाबा को कितने बच्चों ने साकार में भी ब्रह्मा बाबा को पहचानना नहीं तो उसको भी कितनी गालियां मिली, कितना अपमान किया लोगों ने, कितना उल्टा सीधा बोला। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा बच्चे तो निर्दोष हैं, इनका क्या दोष, इनको क्या पता है। कभी बाबा ने उस बात को स्वीकार नहीं किया कि मुझे इतनी गालियां क्यों दे रहे हैं, मैंने क्या किया। बाबा ने कहा इनको पता ही नहीं चलता है कि इसके द्वारा कौन पढ़ा रहा है, कौन कह रहा है। और जब तक इनको पहचान नहीं है तब तक तो जरूर उल्टा बोलेंगे, क्योंकि उनको इतनी ऊंची धारणाएं कराने वाला बाबा और वो समझ रहे हैं कोई ये जादू मंत्र कर रहे हैं दादा। इसलिए बहुत विरोध बाबा ने सहन किए और बाबा ने हमेशा एक ही शब्द उच्चारण किया, बच्चे ये जो गाली देने वाले हैं ये एक दिन जितनी गालियां देते हैं उतने गिन गिन करके फूल चढ़ाएंगे। आज वो दिन आ गए, जितने लोगों ने विरोध किया वो कितनी महिमा करते हैं, कितना कहते हैं हमने बहुत गलती की बहुत भूल की। तो बाबा इतना दयालु इतना रहम दिल बन करके अपने बच्चों को माफ कर दिया, कुछ नहीं बच्चे भूल जाओ, क्षमा कर दिया। हम बच्चों को भी बाबा अपने समान ऐसा बनाना चाहता है कि मेरे बच्चे ऐसे मास्टर रहम दिल स्नेह के सागर बन जाएं। कुछ भी हो रहा है, कोई कुछ करता है, आपके लिए कोई पर्सनल भी करता है तो भी क्षमा करो भूल जाओ। इतनी ऊंची शिक्षाएं बाबा की हम सबको मिल रही हैं, इतना ऊंचा प्यार मिल रहा है, पालना मिल रही है, हमारे स्वरूप में ये ज्ञान उतर आए। लेकिन तभी उतरेगा जब इस पर हमने मनन किया है, चिंतन किया है, उस पर लक्ष्य रखा है कि ये मुझे करना है, ये मुझे बनना है। जैसे कल की मुरली में बाबा ने दो विशेष बातों पर अंडरलाइन कराई। कई भाई बहनों को बड़ी अच्छी आदत होती है भले मुरली हाथ में भी हो, लेकिन उसमें से जो विशेष पॉइंट्स होती हैं उनको नोट करते अपनी डायरी में। आज मैं क्लास में बैठा था, मेरे बाजू में एक भाई बैठा था, वो सारी कल की मुरली की हाईलाइट पॉइंट्स, आज मुरली चल रही वो सुन रहा है लेकिन कल की अव्यक्त मुरली से पॉइंट्स नोट कर रहा था। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये मुरली सुनो ना। कहता नहीं कल की मुरली बड़ी अच्छी लगी थी, मैं नोट ले रहा हूँ, आज की बाद में लिखूंगा। उसके हाथ में मुरली थी। तो मैंने कहा दिखाओ मुझे क्या लिखते हो तुम डायरी के अंदर। तो मैंने देखा डेट वाइज सभी मुरलियों का एसेंस, क्वेश्चन आंसर, धारणा का सार और वरदान स्लोगन। उसने पूरे डेट वाइज शुरू से उसकी डायरी फुल भरी और बहुत अच्छी राइटिंग में। कहे भी मेहनत है, क्या करोगे डायरी भर के, फिर दान करोगे क्या। कहता नहीं जब इच्छा होती है ना पढ़ लेता हूँ, बस याद आ जाती मुरली। तो ये भी एक अच्छे चिंतन के लिए जो बाबा ने कहा बच्चे व्यर्थ समाप्त हो जाए। दो विशेष बातें कि मैं विशेष आत्मा हूँ, विशेष आत्माओं को विशेष संकल्प और कर्म करने हैं, साधारण और व्यर्थ संकल्प भी न चले। अब व्यर्थ से बचने के लिए, क्योंकि व्यर्थ को जो भी हम देख रहे हैं कुछ व्यर्थ दिखाई देता है, संकल्प चल जाते हैं ये व्यर्थ, ये नहीं होना चाहिए, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। कोई भी बात में अगर क्वेश्चन उठ गया तो क्यों लग गई व्यर्थ की। और जिसको व्यर्थ सोचने की देखने की बात करने की आदत बन जाती है ना, उसको हर चीज वही दिखाई देती, अच्छाई दिखाई नहीं देती। जब देखेगा तो उसको वही दिखाई देगा, जैसे कोई चीज क्लिक करो तो वही चीज आ जाती ना सामने बार बार। तो ऐसे ही अगर कोई को आदत ये है तो विशेषताएं आत्मा की दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये क्या करता है, कैसे रहता है, कैसे चलता है, सबके अंदर की अवगुण नोट करता रहता। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे व्यर्थ को देखना बंद कर दो, समर्थ संकल्प करो, समर्थ बोल बोलो, समर्थ कर्म करो। ये विशेष आत्मा हूं इस स्मृति से एक होमवर्क ये दिया कल की मुरली से। दूसरा बाबा ने अंडरलाइन कराई कि हर एक आत्मा की विशेषताओं को देखो। क्यों क्यों क्यों? कि तुम बच्चे ईश्वरीय रॉयल्टी वाली आत्माएं हो, रॉयल आत्माएं हो। कोई भी अच्छी चीज भी अगर छोड़ने वाली छोड़ के जाए तो भी रायल आत्मा है, उसको देखती उठाती नहीं है। ऐसे नहीं उसने छोड़ दिया तो मैं उठा के ले आऊं, यहाँ कोई चीज पड़ी है अच्छी चीज है मैं उठा के छिपा दूं, उठा के ले जाऊं, वो रायलती नहीं है। कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना पड़ी हुई हो, उठाएंगे, अगर मान लो उठाया भी, तो उसको स्थान जहाँ है, जहाँ से वो किसी को मिल सकती है जिसकी हो, उस स्थान पर जमा करा देंगे। लेकिन ये रॉयल्टी नहीं है कि जो चीज हमने देख ली, अच्छी चीज भी देख ली, उठा करके लेके गए। लेकिन बाबा ने जो अंडरलाइन कराई कि विशेषताएं ही दिखाई दें, हर आत्मा जो कुछ पुरुषार्थ कर रही है, हर एक का लक्ष्य है कि मेरी कमी कमजोरी छिक निकल जाए। लेकिन कोई संस्कार के वश है, कोई कारण से उसके अंदर वो संस्कार नहीं जा रहे हैं, वो छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पाती, तो बाबा ने कहा बच्चे वो छोड़ने वाली चीज जो छोड़ने का मेहनत कर रहा है, तुम कम से कम उसको शुभ भावना का दान दो जिससे वो छूट जाए। तुम उसको फैलाओ नहीं, उठाओ नहीं, उस बात को ग्रहण नहीं करो। तो ये दो होमवर्क भी अगर हम अपने जीवन में उतार लें कि हम एक विशेष आत्माएं हैं, मुझे हर संकल्प बोल और कर्म विशेष करना है, कोई भी साधारण संकल्प ना आए, जो हो रहा ठीक है, ड्रामा के अंदर निश्चित विजय की भावी बनी पड़ी है। बाबा ने शुरू शुरू की बात याद दिलाई कि पहला पहला ये स्लोगन था, विजय हमारी निश्चित है, शक्तियों के हाथ में विजय का झंडा है, ये तो निश्चय है ना। एक दिन की बात है, बाबा अव्यक्त बाबा मधुबन में मधुबन निवासियों से मिलने के लिए आए थे, बहुत छोटा ग्रुप था, बाहर की पार्टियां नहीं थी। तो बाबा बहुत फैमिली में, जैसे परिवार में बैठते ना ऐसे, सब ऐसे घेर करके बाबा को बैठ गए और बाबा को सुनाने लगे, बाबा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, फलाने ने ये किया, ऐसा हुआ, सब बातें घर की जो सुनाई जाती बाप को, जैसे ऐसे सुनाने लगे, सरकार के द्वारा ऐसी ऐसी बातें आती हैं, ये विघन आया, ये हो रहा, ये अखबारों में ऐसा आ गया, मतलब जो बातें हुई होती हैं वो सब बाबा को सुनाते गए। तो बाबा बहुत प्यार से पहले सुनता रहा, मुस्कुराता रहा, फिर बाबा ने बड़ा अच्छा शब्द यूज किया, बच्चे तुम्हारा गीत है ना कि किसने सवेरा रोका है, आने वाला जो सवेरा है उसको कोई रोक सकता है क्या? ये सब बातें आएंगी, नीचे ऊपर होगा, कोई ग्लानी करेगा, कोई महिमा करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन विजय तो तुम्हारी निश्चित है ना, कोई कुछ भी करे, विजय हमारी निश्चित है। सतयुग को आना ही है, गोल्डन एज बनना ही है, कलयुग को जाना ही है, और भगवान हमारा साथी है, वो ले जाएगा पार। तो जैसे सच की नैया में हम सब बैठे हैं, तो भले कितना भी हिलेगी डुलेगी, पेपर आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन विजय तो होनी है, निश्चित ही है कि हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि हम सत्य की नैया में बैठे हैं। तो उस सत्यता को सिद्ध करने के लिए, सत्य स्वरूप को सिद्ध करने के लिए हम सबके जीवन की 5 मुख्य धारणाएं दृढ़ता के साथ पालन करनी है, नहीं तो कहीं ना कहीं पेपर के कारण हम बन जाते हैं। जहां जहां भी मैं देखता हूं कोई पेपर आ रहे हैं, बार बार विघ्न आ रहे हैं, वहां पर कोई न कोई ईश्वरीय मर्यादा का उल्लंघन है। यदि बाबा की बनाई हुई ईश्वरीय मर्यादा की लकीर के अंदर ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं चलती हैं और बहुत पक्के नियम को पालन करके चलती हैं, पेपर आने का प्रश्न ही नहीं, बातें आएंगी खत्म हो जाएंगी, लहर आएगी पहाड़ी को टकरा के चली जाएगी वापस, क्या करेगी। लेकिन जहां पर ऐसा वातावरण होता है वहां पर ही पेपर आते हैं और उसको हिलाते हैं, नाम बदनाम करते संस्था का। इसलिए 5 बातें अपने अंडरलाइन अपने जीवन के अंदर उतार लेनी है। तो बहुत सारी बातें बाबा पुरुषार्थ की ढेर सारी बातें रोज सुनाता है, लेकिन एक पहली मर्यादा, पहली धारणा, हमारा फाउंडेशन जो है मन वचन कर्म की प्योरिटी, पवित्रता। जहां पर भी किसी आत्मा ने इसका थोड़ा भी उल्लंघन किया वहां पर विघ्न आने लगते हैं। अगर दृढ़ता के साथ इस व्रत को पालन करते हैं, कुछ भी हो जाए इसके लिए हमें प्राण भी देना पड़े, भगवान को सहयोग है, नई दुनिया की स्थापना की नींव है, ये फाउंडेशन है, मुझे अपने विचारों को भी अशुद्ध नहीं होने देना है, बहुत शुद्ध पवित्र संकल्पों में रमण करना है और पवित्रता के वायुमंडल को क्रिएट करना है। पवित्रता एक बहुत बड़ी शक्ति है, अपने जीवन के लिए भी है और विश्व कल्याण के लिए भी है। यदि इस शक्ति को बहुत दृढ़ता के साथ पालन करते हुए हम निभाते हैं, इसमें जरा भी कहीं कोई लूज ना हो, हर एक ब्राह्मण आत्मा समझे कि इसके इस नियम को मेरे द्वारा कहीं भी दृष्टि में, वृत्ति में, स्मृति में, संकल्प में, बोल में, कर्म में इसका उल्लंघन न हो, इस धारणा के लिए धरत पर ये धर्म न छोड़िए। मना कुछ भी हो जाए, धरनी पर भी पड़ना पड़े, गिरना पड़े, लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकते। बहुत मेहनत करने के बाद भी ये धारणा कोई हिला न सके, ये पहला नियम दृढ़ता के साथ पालन करना। और इसके लिए कुछ न कुछ अपनी धारणाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। ये धारणाएं कभी उल्लंघन अगर होती हैं तो उसके कई कारण होते हैं, जैसे संग गलत है, पढ़ाई गलत है, अध्ययन गलत है, भोजन ठीक नहीं है, समय पर नहीं है, उत्तेजित पदार्थ हम खाते हैं, पीते हैं, ऐसे दृश्य देखते हैं, ऐसे वातावरण में रहते हैं, ऐसे संग में रहते हैं, तो हमारे पर भी उस संघ का प्रभाव पड़ने लगता है। इसलिए कभी न कभी उल्लंघन हो जाता, कहीं न कहीं मन में वचन से कर्म से होने लगता है। इसलिए बाबा कहता है सब नियमों में पक्के रहो, क्योंकि आपको संपूर्ण पावन बन करके मेरे साथ चलना है। तो इस दृढ़ता को, इस संकल्प को दृढ़ता से पालन करना पहली बात है। और दूसरी, बाबा हम सबको कहता है बच्चे अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो। आत्मा सत्य है, अविनाशी भी है और सच भी है। इसलिए कथनी और करनी में जरा भी अंतर न आए, अंदर और बाहर एक स्वरूप हो जाए, मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ। बाबा सत्य है, उसकी पढ़ाई सत्य है और मेरा स्वरूप सत्य है। इसलिए अंदर और बाहर की सच्चाई, जितनी सच्चाई है उतना लोगों को प्रिय लगते हैं। क्यों हेरा फेरी करें, क्यों झूठ बोलें, क्यों बात चलाएं, जो कहें वो सच्चाई भी। लेकिन सच्चाई के साथ बाबा हमेशा एक बात अंडरलाइन करता, कई लोगों जो सच्चे होते हैं ना, कोई का झूठ सहन नहीं कर पाते और कहते हैं मैं क्या करूं, मैं सच्चा हूं ना, मुझे देखा नहीं जाता, इसलिए गुस्सा आता है। बाबा हमको अंडरलाइन क्या कराता है, तुम सच्चे हो तो सभ्यता भी साथ साथ रखो। जहां सत्यता है वहां सभ्यता बहुत जरूरी है, नहीं तो सिद्ध और जिद्द में बदल जाती है। मैं सच्चा हूं सिद्ध करेंगे, फिर जिद्द करेंगे। लेकिन जो सच्चे होते हैं बहुत व्यवहारिक जीवन में, उनके आचरण में नम्रता दिखाई देती है। जैसे बाबा सत्यता का अवतार थे, ब्रह्मा बाबा, दादियां हमारी सत्य स्वरूप हैं, लेकिन कभी भी उनके अंदर अहंकार नहीं आता, बहुत नम्रचित है। तो तीसरी धारणा को अंडरलाइन करना कि व्यवहार के अंदर कितने भी हम आगे बढ़े, कितने भी बड़े हो जाएं, कितनी भी अच्छी धारणाएं हो जाएं, कभी भी नम्रता का गुण छूटे नहीं। नम्रचित माना सबको रिस्पेक्ट रिगार्ड देने वाले, बहुत सम्मानजनक बोल बोलने वाले, जहां नम्रता है वहां अनेक प्रकार की दिव्यता आ जाती है। एक बार बाबा ने मुरली चलाई थी, मधुबन निवासियों को ही बाबा ने कहा था कि नम्रता ब्राह्मण जीवन का सुरक्षा कवच है। अगर आप इस सुरक्षा कवच को पहन के रखे रखो तो कई प्रकार की टकराव की स्थितियों से बच सकते हो। इसलिए नम्र चित्त बन करके मुझे रहना है। नम्रता माना झुकना, झुकने में कोई हमारा कुछ जाता नहीं है, सॉरी करने में बाबा कहता कुछ जाता नहीं है, इसलिए बहुत नम्र चित्त होकर के रहना है। और चौथी बात है, जितना कुछ हम ज्ञान सुन रहे हैं उसको हजम करते हुए गंभीर मूरत बन जाए। अपनी विशेषताओं को भी बार बार वर्णन करें, मेरे अंदर ये विशेषता, मेरे अंदर ये विशेषता है। कईयों को बाबा कहता है इसको मियां मिट्ठू बनना आता है। मियां मिट्ठू समझते हैं किसको कहते हैं? मियां मिट्ठू जानती हो बहने? मियां मिट्ठू किसको कहता है? वो मिट्ठू कहते हैं तोते को। तोता जो होता है ना, वो ऐसे ही अपनी बड़ाई करता रहेगा, जो उसको बोलो वही बोलता रहेगा। तो बाबा भी अपने बच्चों को कहता है, बच्चे अगर कोई विशेषता है भी, कोई गुण है भी, कोई आप अच्छे योगी हो, अच्छी धारणाएं हैं, तो भी अपने मुख से क्यों वर्णन करते हो? अपने मुख से ही वर्णन करेंगे, मैंने ये तीर मार दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसी सेवा की, मैं यहां गया वहां गया, अपनी बड़ाई अपने आप कर दे, मियां मिट्ठू बनते रहते। लेकिन जो गंभीर होते हैं वो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करते, सुनते हैं, सेवा करते हैं, तन मन धन लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं किसी के आगे वर्णन नहीं करते, उसको कहते हैं गंभीर। गंभीर ऐसा नहीं शांत हो गया, चुप हो गया, एकदम चला गया अंदर, जैसे ऐसे लगे नहीं कि ये तो पता नहीं कि चिंतन में किस संकल्पों में खोया हुआ है, उसको गंभीर नहीं कहते। गंभीरता रमणीकता संपन्न है, रमणीक है, लेकिन बहिर्मुखी नहीं। वर्णन चिंतन में नहीं आता ज्यादा, किसी को अपनी प्रशंसा ही नहीं सुनाता रहता कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। तो गंभीरता के गुण पर थोड़ा विचार करना, क्योंकि बाबा ने एक बार एक मुरली में इस बात को अंडरलाइन कराया था और प्रश्न किया था सभी से कि मम्मा कभी धन लेके नहीं आई, कोई स्थूल में पैसा लेके सरेंडर नहीं हुए, और बहुत थोड़ा समय पुरुषार्थ किया, लेकिन मम्मा बाबा से भी आगे चली गई, पहले राधे फिर कृष्ण, संपन्नता में भी बाबा 69 में, वो 65 में ही संपन्न हो गई, क्या अंतर है, क्यों? और धन लक्ष्मी बन गई, धन दिया नहीं यज्ञ में लेकिन धन लक्ष्मी बन गई। तो बाबा ने उसकी विशेषता में ये बात अंडरलाइन की कि मम्मा ने जो कुछ किया, बहुत कुछ किया सेवाएं, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा मैंने किया, या मैं करती हूं, या मेरी ये विशेषता है, नहीं, वो बाबा कराने वाला है। दादी ने भी यही पक्का किया था, कभी भी कोई महिमा करो दादी की, दादी कहेगी नहीं तुमको पता नहीं, मैं कहां कर रही हूं कुछ भी, बाबा करा रहा है, करावनहार बाबा है, मैं कहां कर रही हूं, मुझे तो निमित्त बनाया है। आज कोई थोड़ा सा भी करता है, जो आज बाबा ने कहा ना, घमंड दिखाते हैं, थोड़ा सा पैसा होगा सेवा में लगाएंगे, मैं इतना करता हूं, बाबा कहता है ऐसे बच्चों को मैं चाहूं तो फिर गरीब बना दूं, स्वीकार ही न करूं, मुझे नहीं चाहिए ऐसे बच्चे का धन। करके वर्णन करे, दिखावा करे, इधर उधर बताए, या पूछे तुमने कितना किया, तुमने कितना किया, तुमने कितना किया, तो उसको क्या कहेंगे? इसलिए बाबा हम बच्चों को क्या सिखाता है कि अगर तुम अपना गुप्त भाग्य बनाना चाहते हो तो कुछ भी करो, तन से करो, मन से करो, धन से करो, जिस विशेषता से करो, लेकिन कभी भी ये नहीं कहो मैं करता हूं, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। इतना गंभीर बनकर के अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाते हुए वर्णन और चिंतन मत करो, तो गंभीरता की मूर्ति बनकर के रहना है। विशेषताएं हैं, हरेक को विशेषताएं दिखानी भी है, ऐसा नहीं विशेषता नहीं दिखे, दिखनी भी चाहिए, लेकिन मैं ही ये कर सकता हूं, मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा, इसका अहम नहीं चाहिए। और पांचवी विशेष धारणा आती है कि जितना हो सके मधुरता संपन्न बोल व्यवहार। मधुरता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, जैसे नम्रता कवच है ऐसे ही मधुरता श्रृंगार है। मुख से वाणी कोई भी ऐसे शब्द न निकालें जो किसी के दिल को चोट पहुंचे। जितने संबंध बिखरते हैं, जितनी दूरियां बढ़ती हैं, अगर आप सब देखें कुछ न कुछ बोलने से मुख से निकल गया, हो गया, फिर बाद में सॉरी करते रहो, तीर निकल गया कमान से, फिर कुछ भी कर लो। वाणी अगर एक बार निकल गई तो वापस तो आने वाली नहीं है। इसलिए क्यों ना इतना कंट्रोल हो कि जो जरूरी है वही बोलूं, नहीं तो नहीं बोलूं। बोलो जरूर, ऐसा नहीं मुक्का साधन है बोलना ही बंद कर दो, लेकिन बाबा अपने बच्चों को ये अंडरलाइन कराता है, बच्चे वही बोलो जो तुम्हारे काम का है, दूसरों के भलाई का है, अपनी और दूसरों की उन्नति है, आवश्यक है, वो जरूर बोलो, लेकिन कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो मधुरता हमारे बोल में, दृष्टि में, संकल्पों में आ जाए, और वो तभी आएगी जब हर आत्मा की विशेषता दिखाई देगी। अगर जरा भी किसी की कमी और कमजोरी नोट कर रहे हैं, चिंतन में आ रही हैं, तो कहीं न कहीं कटाक्ष वाले कटु वचन मुख से निकल जाएंगे। इसलिए बहुत अंदर नहीं रखो, मधुर वही बोल सकता है, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से मीठा बोलता और अंदर छोरी चला जाए। कई ऐसे भी करते हैं, ऊपर से बड़े मीठे होते और अंदर अंदर पता नहीं क्या कर देंगे। उनसे तो बाबा कई बार उनको कहता है ये बड़ा खतरनाक खौफनाक है, इसे बच के रहना, उसको परख के चलना। लेकिन अगर मधुर है, सच्चाई उसकी झलकती है कि मधुर व्यवहार है इसका, इसका बहुत सम्मानजनक व्यवहार है, तो अंदर बाहर एक होगा। इसलिए बाबा के ये पांच गुण हमारे जीवन के अंदर नेचुरल रूप में आ जाए, पवित्रता, सत्यता, नम्रता, गंभीरता और मधुरता, तो ये पांचों गुणों के संगार से आत्मा जहां रहेगी, जिस स्थान पर रहेगी, उस स्थान को निर्विघ्न बना देगी। ऐसा कोई निर्विघ्न आत्माओं का ग्रुप चाहिए, संगठन चाहिए। पांच लोग, दस लोग भी अगर हों, चिंतन करके अच्छे ऐसे ग्रुप में, वो ग्रुप नहीं, बाबा जो उस दिन कह रहे थे क्या पांडव गोप कमेटियां बनाते हैं, ये मनमत वाली कमेटियां भगवान को पसंद नहीं आती। थोड़ी देर उन्नति की बात करेंगे, विपर चिंतन, पर दर्शन, ये करता वो करता, ऐसा होता वैसा होता, ऐसे ग्रुप को बाबा की छुट्टी नहीं है। लेकिन अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए अगर हम हफ्ते में एक दिन भी इकट्ठे होकर के गहरी ज्ञान की रूह ध्यान करें, योग करें, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं कुछ समय से शांति वनवारों को ऐसे ही अचानक दादी जानकी ने मुझे कहा कि कम से कम पॉजिटिव लोगों का 10 का ग्रुप बनाओ मुझे, मुझे कहा ऐसे ऐसे बैठे थे जो बिल्कुल विचारों की पॉजिटिविटी वाले हों, कोई नेगेटिव संकल्प सुने देखें बोले नहीं, ऐसा ग्रुप होना चाहिए। मैंने कहा दादी आप कहती हैं, मैं देखता हूँ, कोशिश कर। पहले 8-9 भाई तैयार हुए, ऐसे ही आ गए सामने से, बाबा ने जैसे भेज दिया, और अभी 40 आत्माओं का ग्रुप है। दिवाली मना रहे थे, सब जगह खूब हंसे बहले, डांस किया, ये किया वो किया। मैंने कहा हम लोग सच्ची दिवाली मनाएंगे, वो करो भले वो करो, मैं मना नहीं करता, सब में जाओ। कहे सच्ची दिवाली क्या है? हमने कहा चलो आज हाल के अंदर मैं बताता हूँ कैसे बैठो हम दिवाली मनाएंगे। सब कुर्सियां, क्योंकि सब आजकल कुर्सियों में बैठते हैं, नशी बाबा के शेप में कुर्सियां लगाओ पूरे हाल में, ऐसे सुंदर डिजाइन में ऐसे लगवाई दो लाइन में, और बीच में एक इतना बड़ा दीपक रखा, लाइटें बंद करवा दी, बहुत अच्छी ट्यून बजाओ और बहुत अच्छा गीत बजाओ, और कम से कम 45 मिनट इसके आगे बैठ करके बिल्कुल आत्मा हूँ, ये महाज्योति है, मैं ज्योति हूँ, ये जो मुरली बाबा ने चलाई ना बार बार दीपक, ये सूरत ही दीपक है, इसके बीच में दीपक जमक रहा है, ये साधारणता समाप्त हो जाए। आधा पौना घंटा ऐसा योग किया, डेड साइलेंस हो गई, कोई हलचल नहीं, कोई हिलाई नहीं, इतना अच्छे अनुभव होने लगे कि जैसे मैं आत्मा इस देह से अलग हो गई। जैसे वो दीपक और लौ दो चीजें हैं, दीपक है दूसरी उसकी लाइट है, ऐसे शरीर है ये दीपक है और मैं इसके अंदर चमकती हुई लाइट हूँ। ये योग दीदी हमें शुरू शुरू में मधुबन में जब हम आए 72-73 में, तो मधुबन में और कोई दिवाली मनाई नहीं जाती थी, कुछ नहीं मनाते थे, कोई पटाखे नहीं छूटते थे, कोई इतना श्रृंगार नहीं होता था, गरीबी भी थी, लाइट भी इतना नहीं जलती थी, तो चार दस दीपक बाबा कमरे में इधर उधर लगा दिए बस। और शाम के समय खास एक डेढ़ घंटा 8 बजे 7 बजे सब बैठ जाओ, छोटे हाल में ऐसे बिठा देती थी, एक ही हाल था छोटा, और एक घंटा ऐसी तपस्या करो, बस दिवाली हो गई हमारी। उसके बाद प्रसाद टोली मिल गई सबको। ऐसी तपस्या वाली भट्टी, ऐसी इन दिवाली मनाओ, ये दीपक जल जाए, सामने वाली आत्माओं का भी दीपक जल जाए। तो बाबा भी वो अंडरलाइन करा रहे हैं, इस बारी बहुत मुरली के अंदर वाह दीपक वाह कहा। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी है, रोज इसका अभ्यास करो कि मैं इस दीपक में, इस शरीर के फेस के अंदर, इस दीपक में चमकती हुई ज्योति जगमगा रहे हूं। खुद भी करो, दूसरों को देखो इस नजर से, एकात्मिक दृष्टि बहुत अच्छी बन जाएगी, देह मन समाप्त हो जाएगा। अभी बाह्य मुक्ता में आने का समय नहीं है, बातें बहुत सारी आएंगी, आने दो, परवाह नहीं करनी, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है, सुनना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, सब अच्छा है, बाबा बैठा है, बाबा का कार्य है, यज्ञ चल रहा है, चलता रहेगा। मैं अपने रिकॉर्ड को ठीक रखूं, इन 5 मुख्य धारणाओं को पालन करके चलूं, मेरा रिकॉर्ड अच्छा हो जाएगा और बाबा के यज्ञ में बहुत बड़ा योगदान दे सकता हूं, यज्ञ को निर्विघ्न बनाने में। तो हम सब ऐसा संकल्प लेकर के बाबा के यज्ञ में रहें, सेवा करें और रह करके अपने शुद्ध विचारों द्वारा इस यज्ञ को सदा आगे बढ़ाने में मदद करें। ठीक है, ओम शांति।
साका प्रभु तुम्हारा प्यार।